ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरंश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैस्तकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद में से है, आठवां अध्याय और श्लोक संख्या 45। श्री सिद्धा उचु यो न गतिं योग सिद्धम असाधु अहार्चेद् योग तपो बलेन नाना दर्पं तं नखैर्विद्रान् तस्माहि तुभ्यं प्रणता स्मो निष्माम्। कुछ वक्त ट्राई कीजिए चैन मीनिंग्स। श्री सिद्ध वाचा सिद्ध लोक के निवासियों ने कहा, यह जिस व्यक्ति ने नह हमारी गतिम सिद्धि को योग सिद्धाम योग द्वारा प्राप्त असाधु अत्यंत असभय अथा असत्यनिष्ठ अहर्षित चुरालिया योग योग तप तथा तप का बलेन बलपूर्वक नाना दर्पम संपत्ति ऐश्वर्य तथा शक्ति के कारण घमंडी तम उसको नखैर नाखूनों से विद्दारा चीर डाला तस्मै उस तुभ्यम तुम्हें प्रणतः नतमस्तक समहा हम हैं नरसिंह, हे नरसिंह देव, सिद्ध लोक के वासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान नरसिंह देव, हम लोग सिद्ध लोक के निवासी होने के कारण अष्टांग योग में स्वतः सिद्ध होते हैं, तो भी हिरण्यकशिपु इतना धूर्त था कि उसने अपने बल तथा तपस्या से हमारी सारी शक्तियां छीन ली थी। इस तरह वह अपने योग बल के प्रति घमंडी हो गया था। अब आपके नखों से इस दुष्ट का वध हो जाने के कारण हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप मेरे पीछे दोहराएंगे, सिद्ध लोग के वासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान नरसिंह देव, हम लोग सिद्ध लोक के वासी होने के कारण अष्टांग योग में स्वतः सिद्ध होते हैं, तो भी हिरण्यकशिपु इतना धूर्त था कि उसने अपने बल तथा तपस्या से हमारी सारी शक्तियां छीन ली। इस तरह वह अपने योग बल के प्रति घमंडी हो गया। अब आपके नखों से इस दुष्ट का वध हो जाने के कारण हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, पृथ्वी पर ऐसे अनेक योगी हैं जो जादू की तरह सोने के कुछ टुकड़े निर्मित करके कुछ कुछ योग शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, किंतु सिद्ध लोक के वासी सचमुच ही योग शक्ति में अत्यंत प्रबल होते हैं। वे वायु यानों के बिना ही एक लोक से दूसरे लोक तक उड़कर जा सकते हैं। यह लघिमा सिद्धि कहलाती है। वे सचमुच ही बहुत हल्के हो सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं, किंतु हिरण्यकशिपु और तपस्या के द्वारा सिद्ध लोक के विवासियों को मौत को मात कर दिया और अपने लिए उत्पात खड़ा करने लगा। सिद्ध लोक के यह वासी हिरण्यकशिपु द्वारा परास्त भी कर दिए गए थे। अब जबकि हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने कर दिया है, सिद्ध लोक के वासियों को भी राहत का अनुभव हुआ। मुकम करो दिवाचानम पंगुन्लंगयते गिरिं यत् कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीना तारणम। ये तात्पर्य पढ़ते समय मुझे एक प्रसंग आया, श्री प्रभुपाद जी के मुखारविंद से ये निकला है प्रसंग। इसी मंदिर के प्रारंगन में जैसे आज का श्लोक कह रहे हैं, सिद्ध लोग के जो योगी हैं उनको हिरण्यकशिपु ने पराजित कर दिया था। वो तो बहुत एडवांस योगी हैं, सिद्धि हैं, पर इस लोक में भी धरती में भी कुछ लोग हैं जो जादू जैसा कर सकते हैं। कुछ सोना प्रकट कर देते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा एक जादूगर यही प्रांगण में आया था, प्रभुपाद जी से मिला और बहुत शो ऑफ दिखावा कर रहा था और कहने लगा प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी देखो मैं मुझे काफ़ी शक्तियां हैं, मैं कई तरह के जादू कर सकता है, तो क्या आप कोई जादू कर सकते हैं। प्रभुपाद जी को चुनौती दे रहा था। प्रभुपाद जी के सामने उसमें कई देशों से भक्त आए हुए थे और सब वैष्णवों की पद्धति पालन कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये है मेरा जादू, ये देखिए, ये सब जिन्होंने कभी भी भगवद गीता का नहीं सुना था, जिनको कोई हरे कृष्ण मंत्र के बारे में नहीं मालूम था, जो इतने पाप में जीवन में थे, अभी सब वैष्णव बन गए हैं, ये मेरा जादू है। ये प्रसंग नरसिंह देव का बहुत अद्भुत दिव्य प्रसंग है, जो कि वैकुंठ से ही प्रारंभ होता है। वैकुंठ में जो द्वारपाल हैं जय विजय, एक बार चतुर्सना चार कुमार, सनक सनातन सुनंदर और सनत कुमार, जो बाल ब्रह्मचारी थे, वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते थे अपने आदरणीय भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करने के लिए। तो उस समय द्वारपाल जय विजय ने उनको प्रवेश नहीं करने दिया, कहने लगे कि तुम तो बाल हो, यहाँ में नहीं प्रवेश कर सकते। तो इस बात पर चार कुमार बहुत रोषित हो गए, ये बाल हो या बड़े हो, वैकुंठ में प्रवेश नहीं देना जा रहा, ये बुद्धि जो है ये तो मर्त्य लोकों के वासी जो हैं, मृत्यु लोक के वासी हैं उनकी बुद्धि है, यहाँ में यह नहीं भेदभाव होना चाहिए। क्या सुनाई नहीं दे रहा पीछे में? तो फिर ये साउंड सिस्टम को ठीक करें। हाँ थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, हाँ थोड़ा आगे आना पड़ेगा। तो जैसे द्वारपालों ने जय विजय ने उनको प्रवेश करने से इनकार किया, चार कुमार बहुत रोषित हो गए और उन्होंने शाप दिया कि आप मृत्यु लोक में जाएं जहाँ के भेदभाव ऐसे होते हैं। तो यह बात जब श्रीमन्नारायण तक पहुँची तो तब तुरंत वो वहाँ पहुँचे जहाँ ये वाद विवाद हो रहा था। तो चार कुमार श्रीमन्नारायण को वहाँ पहुँचते पाकर उन्होंने सोचा हमारे से गलती होगी, हमने ये शाप दे दिया क्रोध में आकर, ये अब ये जो है शाप ये टल तो नहीं सकता, लेकिन हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, सो हम आपको चयन कर सकते हैं। ये लोग या तो सात बार भक्त के जीवन में आए या तीन बार असुरों के योनि में आए। तो इन जय विजय ने सोचा कि अगर सात बार हम जाएंगे तो बहुत चीर समय तक मर्त्यलोक में रहना पड़ेगा, उससे अच्छा है तो तीन बार हम असुरों का जन्म ले लेंगे और शीघ्र वापस वैकुंठ में लौट आएंगे। और वैसे भी यह लीला जो थी, क्योंकि जय विजय द्वारपाल यह श्रीमन्नारायण के हृदय की बात समझते थे कि श्रीमन्नारायण वास्तव में एक युद्ध करना चाहते थे और किससे युद्ध करें वैकुंठ में, वहां तो सब भक्त हैं। ये भाव, ये इसको कहते हैं कृष्ण जी जो हैं वो सब भावों के ओरिजिन हैं। जो भी हमको भाव यहाँ में मिलते हैं वो उनका आदि स्वरूप ओरिजिनल स्वरूप वैकुंठ में है। ये जय विजय समझते थे कि हमारे प्रभु श्रीमन्नारायण की बहुत इच्छा है युद्ध में करना किसी पर, यहाँ में कोई असुर नहीं मिलेंगे, ये तो वैकुंठ है। तो उन्होंने यह भाव समझते हुए यह इच्छा पूर्ति के लिए यह शाप स्वीकार कर लिया और उन्होंने 3 बार असुरों का जन्म लिया। और ये 3 बार असुर थे, जो पहली बार आए थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिनकी कथा अभी चल रही है, और नेक्स्ट में वो आए थे रावण और कुंभकर्ण उसके भाई, और तीसरे में वो आए शिशुपाल और दंत बकरा। और उसके बाद चैतन्य चरितामृत में ऐसे भी आता है एक चौथे अवतार में भी आए थे, किनको याद है चौथा अवतार? जय विजय, सॉरी जगाई मदाई के रूप में आए, फिर उसके बाद उनका उद्धार हो गया। सो जैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष यहाँ में आए, तो पहले तो श्री मन विष्णु ने अपने वराहा के रूप में आकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और हिरण्याक्ष का जब भी वध हो गया तो ये जो हिरण्यकशिपु था इसको बहुत ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी कि ये विष्णु हमेशा देवताओं का ही साथ देते हैं और असुरों के खिलाफ रहते हैं हमेशा। उसने प्रतिशोध लेने के लिए अपने भाई हिरण्याक्ष के प्रतिशोध लेने के लिए इतनी कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के लिए मंडर पर्वत में जाकर हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की, उसका शरीर पूरा चींटियों ने खा लिया और उसके सिर से आग लगने लगी जो कि पूरे ब्रह्मांड तक फैलने लगी। तो इतने में साक्षात ब्रह्मा जी को आना पड़ा और उन्होंने आकर अपने कमंडलों में से, जिसमें गंगा जी का जल था, उस पर छिड़का और उसका शरीर वापस आ गया और वरदान मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, इतनी कठोर तपस्या, इनका मकसद यह था हिरण्यकशिपु का कि मैं अमर हो जाऊं, प्रार्थना करता है वरदान के लिए, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, मैं स्वयं ही अमर नहीं हूं। भगवद गीता में बताया गया है ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है, दीर्घ है, लेकिन सीमित है। सो ये हिरण्यकशिपु, क्योंकि असुर लोग होते हैं, इनकी बहुत कपट बुद्धि होती है, उन्होंने सोचा अमरता का तो वरदान नहीं दे रहे, चलो मैं ऐसे वरदान मांग लूँ जो अमरता के समान ही हो, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, कोई भी अस्त्र से नहीं मरूं, इस सृष्टि की कोई जीव से नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी ने ये सब वरदान दे दिए। तो जैसे ही वो वरदान दे दिए, सोचने लगा अब तो मैं अमर हो गया, मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, तो कब मरूंगा, सो मेरी मृत्यु ही नहीं होगी, बाहर नहीं मरूंगा, अंदर नहीं मरूंगा, कहाँ मरूंगा, कोई अस्त्र मुझे नहीं मार सकेगा, इस जी सृष्टि का कोई जीव मुझे मार नहीं सकेगा, तो फिर मेरी मृत्यु कैसे होगी, तो मैं अमर हो गया हूँ, ऐसा सोचने लगा। और ऐसा सोचते हुए तीनों लोगों को परेशान करने लगा, उनमें ये सिद्ध लोग भी थे जो आज का श्लोक पर सिद्ध ऊंचा, इतने महान सिद्ध थे, इनको इनकी सिद्धियां थी, लेकिन वो सब सिद्धियां छीन ली इस हिरण्यकशिपु ने और अपने पूरे राज्य में घोषित कर दिया कि मुझे ही भगवान कहो, विष्णु का नाम कोई भी ले तो उसके मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद वो निर्भय था और साक्षात जाकर हिरण्यकशिपु अपने पिता को बोला, पिताश्री क्षमा कीजिए, लेकिन आप विष्णु नहीं हैं, आप भगवान नहीं हैं, भगवान तो विष्णु हैं, आप फ्रॉड हैं। सीधा ही बोल दिया, फ्रॉड हैं आप, डुप्लीकेट हैं आप, नहीं हैं विष्णु नहीं हैं। ऐसा जब हिरण्यकशिपु ने सुना बहुत क्रोध आया और अनेक तरह के उपाय किए उसको मारने के लिए। सर्पों के एक केज में डाल दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाथी के नीचे कुचलने के डाला, हाथी ने उठाकर अपनी पीठ पर रख दिया। जहरीला पदार्थ खीर दी लेकिन भगवान को ऑफर किया और नहीं मृत्यु हुई। जो भी उपाय करता हिरण्यकशिपु विफल होते प्रहलाद को मारने के लिए। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, अगर कृष्णा किसी को शरण देते हैं तो कोई उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हत्या नहीं कर सकता, और अगर कृष्णा किसी को मारना चाहते हैं तो कोई उसको बचा नहीं सकता। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। प्रहलाद की जब भी हत्या नहीं हो पा रही थी हिरण्यकशिपु से बहुत क्रोधित हुआ और पूछने लगा प्रहलाद से, ये शक्तियां आपको कहाँ से मिल रही हैं? तो कहने लगा प्रहलाद, ये तो भगवान विष्णु की शक्ति हैं, कहाँ है तुम्हारा भगवान विष्णु? वो तो सर्वव्यापी हैं। प्रहलाद ने कहा, सर्वव्यापी हैं तो क्या इस स्तंभ में भी हैं? पत्थर का स्तंभ था। प्रहलाद ने कहा, जी पिताश्री, इस स्तंभ में भी हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर ये श्लोक बताया गया है। प्रहलाद ने कहा है कि जी इस स्तंभ में भी हैं। प्रहलाद के वचन रखने के लिए भगवान विष्णु उस स्तंभ से प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु अपनी तलवार लेकर आया और स्तंभ पर अपनी तलवार मारी और उसी समय भगवान नरसिंहदेव वहां से प्रकट हो गए। अपने वचन, अब भक्त प्रहलाद का वचन रखने के लिए भागवतम में ये श्लोक आया है। और फिर नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया, उसके सब जो असुर साथी थे उसका भी वध कर दिया। और हिरण्यकशिपु का वध करते उन्होंने कोई भी शर्तें नहीं तोड़ी, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, ये सोचा था कब मरूंगा, ठीक है, संध्या के समय, वो नहीं दिन है ना ही रात है, बाहर नहीं मरेगा अंदर नहीं मरेगा। हिरण्यकशिपु का जो घर का दरवाजा है बिल्कुल गेट में, वो ना ही अंदर है ना ही बाहर है। और फिर कोई अस्त्र से नहीं मरेगा, नो प्रॉब्लम, मुझे अस्त्र की जरूरत नहीं है, अपने नाखून से छाती चीर दी। इसलिए हम एक प्रेयर हर रोज गाते हैं, ताव कर कमलावरे नखाम मधुबूत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपूत नृंगम केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये जयदेव गोस्वामी ने लिखी है कि तावा कर कमलावरे, आपके कर जो हैं, हाथ जो हैं कमल जैसे हैं, तावा कर कमलावरे, लेकिन उन्हीं कमल जैसे हाथों में नाखून वज्र जैसे हैं, नखाम अभूत श्रृंगम, श्रृंग जैसे। ये कैसे आया है? तो ये अद्भुत रूप है उनका। सो अपने अद्भुत रूप नरसिंहदेव में आकर छाती शिरडी, और जो ब्रह्मा जी के द्वारा शर्त दी थी हुई थी उनका मान भी किया, मान भी रखा। दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरे, संध्या के समय मारा, बाहर नहीं अंदर नहीं, गेट के एकदम गेट में, जो बाहर नहीं अंदर नहीं, आकाश में नहीं, धरती पे नहीं, ना ही सागर में। कोई भी शर्तें जो उन्होंने मांगी थी, वरदान मांगे थे, उनको तोड़ा नहीं, सब का पालन करते हुए हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। सर ये अद्भुत हिरण्यकशिपु की जो कथा आती है, जिसमें नरसिंहदेव अपने भक्त प्रहलाद का रक्षण करने आते हैं, नरसिंहदेव को भक्त विघ्न सब दूर कर देते हैं, विघ्ननाश कहते हैं, सब तरह की विघ्नाएं दूर कर देते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग इस्कॉन में अमेरिका में कई बाधाएं आ रही थी, कई डीमंस ने अटैक किया था, कई मंदिरों पर बॉम्ब भी फेंक किए थे। सो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको बताया था कि हर एक आरती के बाद ये जो नरसिंह प्रेयर है वो उसका उच्चारण करना चाहिए, और दोनों अच्छे जो है जयदेव गोस्वामी का और नरसिंह प्रेयर जो है उसका उच्चारण करना चाहिए। सो नरसिंह देव का जो ये इतना दिव्य पास टाइम है, उसका संबंध कुछ और लीलाओं में भी आती हैं। वो दो लीलाएं जो हैं, एक तो यहाँ ब्रज में ही वृंदावन लीला जो है उसके साथ संबंध है। वो लीला ऐसी है कि जिस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, यहाँ के आचार्य एक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, यह कथा हम इसलिए सुना रहे हैं, कई वक्त आप मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे, शर गोस्वामियों के मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, उनमें से एक प्रसिद्ध मंदिर है राधा रमन जी महाराज का, तो आज उनके बारे में थोड़ा कथा सुनाएंगे और उनका नरसिंह देव से क्या संबंध है वो थोड़ा बताएंगे। तो श्री राधा रमन जी के जो स्थापक आचार्य, उनका नाम गोपाल भट्ट गोस्वामी है, और वो षट गोस्वामियों में से एक हैं, श्री रूपा, श्री सनातना, भट्टा रघुनाथा, श्री जीवा, गोपाल भट्टा दास रघुनाथ, ठीक है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एक बार नेपाल में गए थे, गंदकी नदी से जब भी उन्होंने अपना कुमंडलू डाला तो द्वादश शालाएं प्रकट हुए उसी जल में, कुमंडलू के जल में, वो लेकर आए और उन्हीं की आराधना में लगे हुए थे। तो एक दिन एक भक्त आए, उनकी इच्छा थी कि एक पोशाक ठाकुर जी की सेवा में अर्पण करें, तो उन्होंने ये पोशाक अर्पण कर दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सोचा कि मेरे पास तो विग्रह नहीं है, इतना सुंदर पोशाक लेकिन विग्रह नहीं है, द्वादश शिलाएं तो जरूर थी उनके पास शालिग्राम, लेकिन विग्रह नहीं थे। तो चिंतन में से सोच रहे थे इसके बारे में, वो दिन था नरसिंह चतुर्दशी की एक पूर्व रात का, और उस समय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ये सातवें स्कंद में जो नरसिंह देव की कथा बताई गई है, जिसमें प्रहलाद के वचन रखने के लिए नरसिंहदेव एक स्तंभ से प्रकट हुए, इस पर चिंतन कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, और उनका मन में यह विचार था कि अगर एक भक्त प्रहलाद के वचन रखने के लिए एक स्तंभ से नरसिंहदेव प्रकट हो सकते हैं, भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो क्यों नहीं मेरी शालिग्राम शिला से भी भगवान अपने रूप में प्रकट हो जाए। तो उन्होंने सोते समय थोड़ा जब विश्राम कर रहे थे, यही चिंतन की बात थी, काश मेरी शिला से भी भगवान प्रकट हो जाए। और ऐसा विचार चिंतन करते हुए कुछ देर के लिए विश्राम किया। प्रातःकाल उठे, स्नान आदि किया और जब ही मंदिर के गर्भगृह में गए, फाटक खोला, अंदर देखा, शालिग्राम तो थी, शालिग्राम के मध्य में एक श्री श्री राधा रमन जी महाराज विराजे हुए थे। बोलो श्री श्री राधा रमन जी महाराज की। तो ये कथा श्री राधा रमन जी की। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भक्ति के कारण वह शालिग्राम से राधा रमन जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए। और ये राधा रमन जी महाराज के आप दर्शन करेंगे, जिन बहुत अद्भुत दर्शन है, दिव्य दर्शन है। और डीटीस में जो दांत हैं वो इतने स्पष्ट नहीं देखते, ये दर्शन करने के राधा रमन जी के दांत बहुत स्पष्ट मिलेंगे और उनके नाखून भी स्पष्ट मिलेंगे और उनकी सेवा भी। राधा रमन जी के पीछे घर में गोपाल भट्टा जी का जो ओरिजिनल स्वरूप है, मंजरी स्वरूप है, वहाँ में उनकी पूजा होती है। तो ये वृंदावन से नरसिंहदेव का संबंध। सुवृंद ये नरसिंहदेव की लीला चैतन्य महाप्रभु जी के साथ भी एक बहुत गहरा संबंध है। तो चैतन्य महाप्रभु जी जियत नरसिम्हा मंदिर में गए थे साउथ इंडिया में, और वहाँ गए तो उन्होंने नरसिंहदेव को प्रणाम किया, नरसिंहदेव की इसके सामने नृत्य किया और उन्होंने ये मंत्र बोला, ये महामंत्र, ये मंत्र चैतन्य महाप्रभु जी के मुख अरविंद से हैं। पहले मैं एक बार बोलूँगा फिर मैं आपसे दोहराऊँगा। श्री नृसिम्हा जय नृसिम्हा जय 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 नृसिम्हा प्रहलादिशा जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा। सब मेरे पीछे दोहराएंगे, श्री नृसिम्हा जय नृसिम्हा जय 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 नृसिम्हा प्रहलाद ईशा जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस मंत्र का उच्चारण किया करते थे। तो अभी हम यह लीला पर आते हैं। चैतन्य लीला में नरसिंहदेव कैसे आए, तो महाप्रभु जी गया से जब भी लौटे और उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद वो बहुत ही गंभीरता से प्रचार करने लगे, संकीर्तन का प्रारंभ किया उन्होंने। और उन्होंने अपने दो मुख्य पार्षद से नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर और कई भक्त थे, उन सबको आदेश दिया था संकीर्तन आंदोलन चालू करने का। और ये संकीर्तन आंदोलन जो था ये श्रीवास ठाकुर जी के घर में प्रारंभ हुआ उसका। तो जैसे ये संकीर्तन श्रीवास ठाकुर जी के घर में प्रारंभ हुआ तो कई जो वहाँ के लोकल हिंदू लोग थे
वो ईर्ष्या करने लगे और उनको चिंता थी कि अगर ये चैतन्य महाप्रभु जी का कीर्तन ज़्यादा फैलने लग गया तो हमको लोग नहीं ज़्यादा मानेंगे और हमारे दिनचर्या नहीं होगी, कैसे हम अपना जीवन मेंटेन करेंगे। इसलिए उन्होंने ही वहाँ का जो काजी था चांद काजी आरोप लगाया कि ये निमाई तो हमारा धर्म बिगाड़ रहा है, कहीं नहीं लिखा होगा कीर्तन करना है। वेदांत ये स्मार्टा लोग थे, ये नहीं जानते थे कि संकीर्तन यज्ञ ही ऑथराइज्ड है इस कलयुग के लिए। तो श्रीवास ठाकुर जी के घर पहुंचा चांदकाजी और चेतावनी दी कि इस बार मैं आपको छोड़ देता हूं जो कीर्तन कर रहे हैं, अगली बार आपने कीर्तन किया तो मैं सबको मुसलमान बना दूंगा। ऐसा कहते हुए मृदंगा फोड़ दिया और क्रोध से चला गया। तो श्रीवास ठाकुर जी और सब वैष्णवों को बहुत चिंता होने लगी, ये कहकर गया कि हम सबको मुसलमान बना देगा, इससे तो मृत्यु अच्छी है। उन दिनों क्या था, मुसलमान लोग मुख में थोड़ा पानी लेते थे और हिंदुओं पर थूक देते थे, वैष्णव पर, और जिस पर थूका जाता था उसको समाज उसका भविष्य काट कर देता, बॉयकॉट कर देता था, अभी तुम हिंदू नहीं है। तो ये सोचते थे इससे तो मृत्यु अच्छी है, ये पाप माया जीवन क्यों हम लें। तो ऐसे में श्रीवास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु जी के पास पहुँचे और कहने लगे, प्रभु आपको ही रक्षा करनी है, ये चांद काजी हमको चेतावनी देकर गया है, हम सबको मुसलमान बना देगा, इससे अच्छा तो मृत्यु दे दें हमारे को। महाप्रभु जी ने कहा, हम देखते हैं किसका साहस है इस संकीर्तन को रोकने का, आज शाम को हम सब चलेंगे चांद काजी के पास और देखेंगे कैसे वो रोकता है हमारा संकीर्तन। तो शाम के समय हजारों की संख्या में वैष्णव इकट्ठे हुए और महाप्रभु जी सबसे आगे थे, उनका यह देश था सबको कीर्तन करना है, सब कीर्तन कर रहे थे। और ये घटना वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से बताई है। सब कीर्तन कर रहे थे और इतना वंडरफुल अद्भुत दृश्य था, सब किसी के हाथ में मृदंगा, कोई मृदंगा बजा रहे थे, कोई दोनों हाथों से करताल बजा रहे थे, कोई ताड़ियां मार रहे थे, कई के दो हाथ ऊंचे थे। और वृंदावन दास ठाकुर जी बताते हैं कि सबके हाथ में, क्योंकि रात का समय था, मुशाल थी, मुशाल होता है लाइट करने का पुराने जमाने में, और तेल, तेल डालते रहते हैं और अग्नि प्रज्वलित रहती है ताकि अंधेरा नहीं रहे, सबके हाथ में ही था। तो ये अद्भुत बात है, सब मृदंगे बजा रहे थे या करताल बजा रहे थे या ताड़ियां बजा रहे थे या किनके हाथ ऊंचे थे, नृत्य कर रहे थे और सबके हाथ में मुसल और घी घी या ऑयल डालने वाला था, ये कैसे हो सकता है। मृदंग भी बजा रहे हैं, करताल भी बजा रहे हैं, हाथ ऊंचे हैं कईयों के और कई नृत्य कर रहे हैं, लेकिन सब मुसल में तेल डाल रहे हैं ताकि अंधेरा नहीं हो। वृंदावन दास ठाकुर ने बताया है कि उस समय सब के दो और बुझाएं प्रकट हो गईं, तो सब काम एक साथ हो रहा था, वो जलती भी रहे ज्योत, मृदंगा भी बजता रहे, करताल भी बजता रहे, ताड़ियां भी बजते रहे, नृत्य भी होता रहे और अंधेरा भी दूर होता रहे। तो ऐसे संकीर्तन करते करते चंद काजी के महल तक पहुँचे। तो चंद्रकाजी के महल तक जब पहुँचे, चंद्रकाजी तो छुप गया, इतनी संख्या में आए हैं, भयभीत हो गया। महाप्रभु जी ने संदेशा भेजा, देखो आप तो हमारे मामा हैं, हम एक ही गांव के हैं, आप हमारे मामा हैं। वैसे गौरगणों देशा दीपिका में ऐसा भी लिखा है, वो असली मामा भी थे, कृष्ण के मामा कमसी थे, चंद्रकाजी थे। तो चंद्रकाजी के पहुँचे, कैसे तैसे मनाया इसको, और काफ़ी वार्तालाप हुआ महाप्रभु और चंद्रकाजी में। अभी मैं बहुत संक्षेप में ही बताता हूँ। वार्तालाप के बाद महाप्रभु जी ने कहा, उसे पूछा, देखो चंद्रकाजी, अभी तो मैं देख रहा हूँ आपके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ रहा है। जो आप धमकियाँ दे रहा था, चेतावनी दे रहा था, मैं देख रहा हूँ अभी वो भाव नहीं है आप में, आपका हृदय मर्म हो रहा है, लग रहा है, क्या कारण है इसका? तो चंद्रकाजी ने बताया, जब भी मैं विश्राम कर रहा था उस समय एक बहुत भयंकर सिंह मेरी छाती पर आकर बैठ गया और मुझे कहने लगा, देखो चंद्रकाजी, इस बार मैं तुम्हारे को छोड़ देता हूं, अगर भविष्य में इस संकीर्तन को रोकने का प्रयास किया तो मैं तुझको, तेरे पूरे परिवार को और सब मुसलमानों की कौम का नाश कर दूंगा। और फिर चंद्रकाजी ने अपनी ओढ़नी थोड़ा अलग ही करके दिखा, ये देखो ये सिम के निशान है, चिन्ह के निशान, कौन सा वो? नरसिंहदेव की जय। ये महाप्रभु जी की लीला में नरसिंहदेव का प्रवेश होना है ना। तो ऐसे बहुत अद्भुत पास्ट टाइम्स हैं नरसिंहदेव के। एक और मैं पास्ट टाइम बताना चाहता हूँ। यहाँ से ही थोड़ा ही दूर आगरा, सबने सुना है, उस समय वो अकबर प्रशासन करता था। तो वो प्रशासन अपने नौ रत्न उसके कहते थे, उनमें से सबसे जो बुद्धिमान था बीरबल था। तो अकबर के ये आदत थी, वो हमेशा कुछ ना कुछ तर्क देता रहता था, लेकिन बीरबल इतने बुद्धिमान थे हमेशा उस तर्क को काट देते थे, हरा देते थे उसको। तो एक दिन अकबर ने सोचा, मैं एक ऐसा तर्क दूंगा बीरबल के पास उसका उत्तर नहीं रहेगा। तो अकबर ने कुछ अध्ययन किया था भागवतम का, अपने ही तरीके से, अपने ही अंदाज से भागवतम से कथा सुनी थी गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र मोक्ष में यह आता है, जब ही गजेंद्र की पुकार सुनी, भगवान वैकुंठ में थे, शयन कर रहे थे, उनकी पुकार सुनते, ये तो मेरा भक्त गजेंद्र बहुत संकट में है, तुरंत मुझे जाने का है। आचार्य ने लिखा है, उस समय भगवान ने अपनी ओढ़नी भी नहीं डाली, समय नहीं है, पादुक भी नहीं डाले, समय नहीं है, जल्दी जल्दी गरुड़ के ऊपर बिस्तर भी नहीं डाला, गरुड़ के ऊपर बैठकर तुरंत जहाँ गजेंद्र को घड़ियाल काट रहा था पहुँच के और घड़ियाल का वध कर दिया। तो ऐसी कथा जब अकबर सुन रहा था, है तो मुसलमान था पर कैसे भी उसने ये कथा सुनी थी, तो वो कहने लगा, अपने ही अंदाज लगाने लगा कि देखो आपके भगवान जब भी भक्त संकट में होते हैं वो स्वयं रक्षा करने के लिए आते हैं, क्यों किसी अनुचर को क्यों नहीं भेज देते? हाँ, उसने अपना एग्जाम्पल दिया, देखो मैं प्रशासन करता हूँ, मेरे प्रशासन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स होती हैं
मैं स्वयं तो नहीं जाता, मैं किसी को वो जाके डिटेल लेते हैं, मैं तो आराम करता हूँ। आपके भगवान जब भी देखते हैं कि भगवान संकट में है तो स्वयं आते हैं, मैं इस बात से प्रभावित नहीं हूँ। तो बीरबल तो बहुत बुद्धिमान था, थोड़ा समय दिए मैं आपको इसका भी उत्तर दूंगा। इतने में बीरबल ने क्या किया, अकबर की एक दासी थी और उस दासी को उसने कुछ दिन प्रशिक्षण किया। अकबर का एक बेटा था, उसने इसको दासी को प्रशिक्षण दिया। ये जो बेटा है इसकी उसने ना पुतली बना दी, इमेज बना ली, दूर से बिल्कुल अकबर के बेटे जैसे दिखती थी। और उसको बोला, देखो कुछ दिन में जब दरबार लगेगा मैं आपको इशारा करूँगा, तुम इसको कुएं में फेंक देना मूर्ति को। उसको दासी को क्या मालूम क्या इसके दिमाग में चल रहा है, तो मान गई, उसको कैसे भी मानना ही था। तो कुछ दिन के बाद जब दरबार लगा, अकबर अपने आसन पर बैठे थे, उसके सब मंत्री नवरत्न सभी बैठे थे, बीरबल भी था उनका, ये देख रहा था। उसकी दृष्टि उधर गई जहाँ दासी थी, दासी ने गोद में वो पुटली पकड़ी हुई थी, दूर से लगा कि मेरा पुत्र पकड़ा हुआ है इसमें, वो सपन ले रहा था एक दिन ये मेरा पुत्र भी मेरे जैसे भी शासन करेगा। लेकिन इतने में देखा बीरबल ने उसको इशारा किया, फेंक दो उसको, तो वो गई वो पुटली लेकर कुएं में फेंक दिया। इधर अकबर देख रहा, इसने क्या किया, मेरे पुत्र को कुएं में फेंक दिया, आसन से छलांग मारकर तेजी से दौड़ दौड़ कर कुएं तक पहुंचा और छलांग मारने के लिए तैयार ही था, तब बीरबल का, इसका ही तो ये षड्यंत्र था, बीरबल भी उसके पीछे भाग रहा था, उसको पकड़ लिया। ठहर जाओ बादशाह, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा पुत्र अपनी माता के साथ खेल रहा है, ये तो खाली पुटली थी। जब अकबर ने ऐसे सुना, उसके प्राण समझो वापस आ गए, क्योंकि उसको मालूम था बीरबल टेढ़ा तो है लेकिन झूठ नहीं बोलता, टेढ़ा तो है पर झूठ नहीं बोलता, तो उसको विश्वास आ गया मेरा पुत्र सुरक्षित है। तो जब ही उसके श्वास वापस लौटे तो वह कहने लगा, बीरबल इतनी क्रूरता तुमने मुझसे की, तुमने सोचा नहीं अगर मैं छलांग लगा देता, मुझे तैरना भी बराबर नहीं आता, तो मैं शायद डूब जाता, ये क्या हो इतनी क्रूरता तुमका। बीरबल कहने, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, उस सभा में दरबार में हम सभी बैठे थे, आपको लगा कि उस दासी ने आपके पुत्र को उधर कुएं में फेंक दिया, आप हम किसी को भी बोल सकते थे कि जाकर बचाओ मेरे बच्चे को, हम अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, लेकिन क्यों नहीं किया, आप स्वयं क्यों गए, क्योंकि वो बच्चा आपके दिल का टुकड़ा है और आप समझते हैं कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, आपको ही जाना है उसको बचाने के लिए। वैसे ही जब भी भगवान देखते हैं मेरे भक्त संकट में है, वो किसी और को नहीं बेचते, स्वयं आकर उसकी रक्षा करते हैं। समय थोड़ा कम है, एक दो और बातें कहे बिना मैं नहीं रह पा रहा, क्योंकि कल प्रभुपाद जी का तिरुभाव उत्सव था, उसमें मैंने एक दो बातें कही थी इंग्लिश में, कई भक्तों के लिए जिनको नहीं समझ पाई, मैं ब्रीफली संक्षेप में यह कहना चाहता हूँ। एक बार प्रभुपाद जी, वैसे प्रभुपाद जी के जो भी मुखारविंद से शब्द हैं, सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, वो अमृत हैं और हमारे लिए बहुत रेलिवेंट महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस उनके मुखारविंद से बहुत रेलिवेंट है, फिर भी एक वाक्य प्रभुपाद जी का जो मेरे हृदय को बहुत
प्रसन्नता देता है और आप सबके हृदय को बहुत प्रसन्नता देगा। वो ऐसा है और उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि एक बार एक रिपोर्टर ने शीला प्रभुपाद जी से आकर ये प्रश्न पूछा, स्वामी जी जब आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? ये प्रश्न पूछा, जब आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मेरी मृत्यु नहीं होगी। और प्रभुपाद जी की मृत्यु नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में, अपनी वाणी में प्रेजेंट है। एक बार बॉम्बे की बात है, कुछ लाइफ मेंबर्स को प्रीचिंग कर रहे थे प्रभुपाद जी, और एक भक्त, उसका नाम भागवत दास है, वो भी उसके भागवत से ही ये कथा, ये लिखित रूप में कथा है। भागवत ने कहा है, प्रभुपाद जी ने उनको प्रचार किया, फिर जब वो लाइफ मेंबर चले गए, प्रभुपाद जी ने भागवत से पूछा कि भागवत आप बताइए, आपको समझ आया जो मैं कुछ बोल रहा था? तो भागवत कहने लगा, प्रभु जी प्रभुपाद सॉरी मैं जो समझ नहीं आया क्या था, मैंने अध्ययन नहीं किया था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो और सेवाएं करना भी बहुत महत्व है, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे लाइफ मेंबरशिप, फंड रेजिंग, मैनेजमेंट, कई सेवाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अध्ययन नहीं करें। यह पुस्तकें मैंने लिखी हैं, आप वितरण भी करो, इनका अध्ययन भी करो, बहुत गहराई से अध्ययन भी करो। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा, मैं स्वयं अपनी पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ, स्वयं अपनी पुस्तकों का, और जब मैं अध्ययन करता हूँ हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया पढ़ने को मिलता है। और फिर प्रभुपाद जी शांत रहे कुछ देर के लिए और कहने लगे, क्योंकि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी, ये स्वयं कृष्ण जी ने डिक्टेट की हैं, मैंने खाली लिखित रूप दिया है। सो इसलिए प्रभुपाद जी अपनी ही पुस्तकें पढ़ते थे। हमारे लिए तो बहुत अनवीर है कि पुस्तकों का अध्ययन हम करें, डिस्ट्रीब्यूशन भी करें पर अध्ययन भी करें। लास्ट पॉइंट ये था, बहुत अच्छा, एक मेरी गुरु बहन है, उसने ऑफरिंग लिखी, बहुत सुंदर ऑफरिंग है, उसमें सब कुछ तकरीबन आ गया। उन्होंने लिखा कि चैतन्य महाप्रभु जी जैसे भगवान के सबसे दयालु, कृपालु, जेनरस, मुनिफिशेंट, उधार, हिंदी में कहेंगे उधार, जैसे उधार हैं, सबसे उधार अवतार हैं भगवान के चरण, वैसे ही सब भक्तों में श्री प्रभुपाद जी सबसे उधार हैं। प्रभुपाद जी से प्रार्थना रहे कि उनकी कृपा हम सब पर बरसती रहे। उन्हीं के कारण हम सब बैठे हैं, सब जगह में सब देशों के लोग बैठे हुए हैं, और हमारे आजकल जो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं वो भी प्रभुपाद जी का जो देन है वो रियलाइज कर रहे हैं। रिसेंटली इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी प्रभुपाद जी को बहुत ग्लोरीफाई किया, और यहाँ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कई बार ग्लोरीफाई किया। रिसेंटली जब भी ये कॉइन रिलीज हुआ था प्रभुपाद की 105वीं वर्षगांठ का, उस पर भी उन्होंने रिलीज किया, और इतना सुंदर भाषण में उन्होंने प्रभुपाद जी को बहुत ग्लोरीफाई किया, और प्रभुपाद जी के बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि उनके पूर्वी जो प्रधानमंत्री थे अटल वाजपेयी, उन्होंने भी इसी का कहा, जो प्रभुपाद जी ने किया वो किसी मिरेकल, क्या कहेंगे हिंदी में, मिरेकल, चमत्कार, थैंक यू, चमत्कार से कम नहीं था। जो प्रभुपाद जी ने किया वो चमत्कार से कम नहीं कहें था, लेकिन हम इसको वाले और भी बढ़कर बोलेंगे, ये एक चमत्कार ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार था। श्रील प्रभुपाद जी आज यहाँ विराम।